दिन के उजाले में किसी के पेट में चाकू मारा जाता है और मारने वाला भाग खड़ा होता है और हम चले जाए। वो भाग खड़ा हुआ है, हमें उसको ढूंढना ही होगा।
क्या कर रहे हो मुश्ताबा?
जनाब, इस गोदाम के कबूतरों का फुजला मेरे जूते में चिपक गया है।
ये तो कबूतर का फुजला लगता है।
कबूतर का फुजला?
ना तो यहाँ है और ना ही अपने घर में। ये उसके ससुर के घर का पता है।
शाबाश, हाँ मुझे पसंद आए तुम। उस बेचारे मजदूर को अंदर भेजा ताकि तुम पता चला सको कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं, इधर उधर पुलिस है या नहीं। वाह वाह, कोई खबर नहीं है, सब अमन अमान है। इधर आने दो इसे। सिर्फ एक वजह से शाइस्ता का कत्ल नहीं किया, क्योंकि सोना कहाँ है उसको नहीं मालूम था।
शादी की रात उसको अगवा कर लिया।
शाइस्ता ये सोच रहा था कि इसके अगवा के पीछे कावे का हाथ है। ये नफ्सियाती खेल कयानूस ने शुरू किया ताकि सोने की जगह का पता चल सके, क्योंकि उसको मालूम था कि शाइस्ता की कमजोरी है रोया।
लेकिन उसने सोने की जगह के बारे में झूठ बोला। क्यों? शाइस्ता ने तुमको और पर्दा याकूत को उस तहखाने में भेजकर कत्लगाह की तरफ धकेल दिया। जब उसने देखा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उसने तुमको भी अपने साथ घसीट लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इस कदर अक्लमंद था कि अपने उन आखिरी लम्हात में वो समझ गया कि सब खेल तुम्हारा ही रचा हुआ है। अब ये बताओ कि सोने की जगह कौन जानता है?
नहीं जानता, नहीं जानता। बस मैंने एक गलती की है कि अनुज का नाम मेरे मुंह से निकल गया। कि अनुज का फासला अब गावे का तुम्हारी बेटी के साथ बस एक बालिश का है। शाइस्ता ने हम लोगों को कत्लगाह की तरफ भेज दिया।
तुम्हारे समसामी और उसके बेटे और उसकी बेटी को अगर अलग कर दें तो फिर ऐसा कौन हो सकता है? हाँ, बस एक रह जाता है और वो है तुम्हारी माँ फ्लोर। क्यों, ठीक है? आपके बेटे को मिर्गी की बीमारी है। क्यों? साजिश की सोच अच्छी थी। तुम्हारा बेटा तुम्हारे भाई के खिलाफ साजिश रचने वालों में से था।
ऐसा लगता है पूरी दुनिया और उसके लोग मेरे खिलाफ साजिश में लगे हों। ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे निकल जाना चाहते हों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
कुछ चीजें मालूम है। यह कि शाइस्ता डर गया था क्या अनुष से, उसकी साजिशों से, एक नए झूठ के तहत। वो जाता है उस तहखाने के अंदर। ये कि वो सोने के सिलसिले में तहखाने में कब गया, ऐसा लगता है कि बहजाद कियान की मौत से पहले गया होगा, क्योंकि अगर बाद में जाता तो बहजाद कियान की मौत के बाद वो जगह पुलिस के पहरे में थी और वहां जाता तो उसे जरूर गिरफ्तार कर लिया जाता। वो सोना लेकर तुम्हारे पास आता है। मैं जानता हूं क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं है, कम से कम उन आखिरी लम्हात के बारे में जब शाइस्ता डरा हुआ तुम्हारे पास आता है और सारी बातें बताता है। मगर एक चीज के बारे में तुम्हें जरूर पता है। शाइस्ता कहाँ है? सोना कहाँ है मोहतरमा शाइस्ता?
मेरा काम कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़ दूं? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العلي العظيم.
बदमाशी मत करो। तुमको नहीं, कावे को बोल रही हूं।
बहुत अच्छा,
बराए मेहरबानी कमरे से बाहर जाए, इनका लिबास बदलना है।
हाँ तो मेरे भाई, अपना सर नीचे मत करो, सुनने का वक्त अब गया। अब देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाओ। डैड की हालत देखने के लायक हो गई है।
मेरी बहन की हालत देखने के लायक हो गई है, मैं खुद भी देखने के लायक हो गया हूं। डॉक्टर का कहना है कि अपने बाप को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करो। पुराने जमाने में लोग जिसे दारुल मजानीन कहा करते थे। मेरे बाप की गलतियां खुलकर सामने आ गई हैं। तुम्हारी मां का असली गुनाहगार, असली धोखा देने वाला, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। अभी हिसाब किताब का वक्त आ गया जो मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब जबकि सब कुछ जाहिर हो गया है, बस बस एक हिसाब बाकी रह गया है। एक चीज जो जाहिर नहीं हुई है, जरा ये तो बताओ कावे, ये तुमने कैसा हिसाब लगा है कि मेरे डैड के साथ रोया के हिसाब को भी जोड़ दिया? क्यों, तुमने किस तरह हिसाब लगाया कि रोया की जिंदगी की पामाली उसमें शामिल हो गई? तुमको अपनी मातमजदा बीवी की खबर है? कमजर्फ इंसान रोया किस जुर्म का खमियाजा भुगत रही है? आदमी किस हद तक पस्ती में गिर सकता है कि उसके चेहरे पर थूका जा सके? गलती करे बाप और सजा मिले बेटी को, ऐसा क्यों? कलेजे को ठंडक मिल गई? तुमको खुदा का वास्ता बताओ, कलेजे को ठंडक मिल गई? ज्यादा शक्ति तो नहीं पाई जाती, मगर कावे तुमको यह बात माननी होगी कि तुम एक थप्पड़ खाने से कहीं ज्यादा के हकदार हो। देखो कावे, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुमसे अपनी बहन का तलाक लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं अपने डैड की तरह खताकार नहीं हूं कि मेरे मुंह से आवाज ना निकले। अगर मैंने अपने घर वालों की इर्द गिर्द भी तुमको देख लिया तो पूरे शहर में हंगामा खड़ा कर दूंगा। क्या मैं बड़ा हो गया हूं नरगिस जान?
तुम जान हो गए हो।
मगर मेरे डैड अब अपने आप में नहीं है, ना तो वो अच्छी हालत में है और ना ही बुरी हालत में।
अगर अब तुम खुद के लिए मर्द बन गए हो, तुम्हारे घर मासूमों से ये बात समझ सकती हूँ। अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चे एक मुकम्मल मेहरबान इंसान, चश्मे वाला मेहरबान। चश्मा लगाए हुए मेहरबान इंसान। बच्चे अपना सर उठाओ, नाहिद के लख्त जिगर अपना सर उठाओ। सर उठाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। सर उठाओ और इस लड़के को देखो। मर्द बन गए हो, बड़े हो गए हो, अपने कंधों को मजबूत करो बाबक। तुम इस घर के मर्द हो। चूंकि इस घर के मर्द हो इसलिए कह रही हूं, अपनी बहन की इस कदर हिमायत करो कि उसको खुशनसीब देख सको, उसको खुशनसीब बनाओ, उसको इस कदर खुशी दो कि कावे की फिक्र उसके जहन से ऐसे हवा हो जाए जैसे उड़ने वाली पतंग हो जो तुम लोग आसमान में उड़ाते थे और वो आसमान में इतनी दूर हवा में उड़ती थी कि एक नुक्ते जैसी हो जाती थी। वैसे ही कावे का ख्याल रोया के जहन में नुक्ता बनकर रह जाए, एक बेकदर नुक्ते की तरह। तुम जाओ बाबक, अपने घर वालों को संभालो। मर्द के बगैर घर घर नहीं रहता, खानदान नहीं रहता। घर का मर्द घर की इज्जत होता है, उससे जिंदगी के उमूर चलते हैं, खानदान का रहनुमा होता है। वो साजिश नहीं करता, दिल नहीं तोड़ा करता। तुम्हारे साथ ही इस कावे को भी यहां से जाना होगा। कुछ मर्द मर्द बनकर दुनिया में आते हैं, तो कुछ को जमाना मर्द बना देता है, तो कुछ को जमाना ना मर्द बना देता है। कावे, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, कहीं भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जिस मर्द को जमाने ने नामर्द बना दिया हो वो किसी घर का महरम नहीं हो सकता, यहां तक कि खुद के घर में भी।
मेरे भाई, ये पीने का पानी है, इससे तुम नहा रहे हो?
शाइस्ता की मेडिकल रिपोर्ट इस फाइल के अंदर है जनाब प्रोसिक्यूटर साहब। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो नफसियाती बीमारी का शिकार हो चुके हैं।
मेडिकल की रिपोर्ट मैं जज साहब को रवाना कर दूंगा। ये 110 मिलियन की रसीद किस चीज की है?
ये पैसा अहमद रजा बाबाई के जरिए एक कर्जुल हसना अकाउंट में जमा किया गया था, जो दर हकीकत शाइस्ता का ही है। अहमद रजा बाबाई कयानोश के एतराफ के बमूजिब 110 मिलियन तोमान एक मस्जिद के कर्जुल हसन अकाउंट में, जिस मस्जिद का पेश नमाज उसका वाकिफ कार और उसके शहर का रहने वाला था, जमा कराता है। यानी वो मदद की गरज से ये पैसा शाइस्ता से लेता है। पहले तो शाइस्ता इसका मुखालिफ था, मगर कियानूश के कहने पर वो अहमद रजा को दे देता है ताकि उसका भरोसा हासिल कर सके। उसके बाद अहमद रजा के नाम से उस मोहल्ले के लोगों की मदद के लिए ये रकम अकाउंट में जमा हो जाती है ताकि लोगों की परेशानियां दूर की जा सकें। इसमें से 17 मिलियन खुद अहमद रजा को कर्जा दिया गया था। कियानूश का एक मंसूबा यह था कि इस अकाउंट की पासबुक के जरिए पुलिस को कायल किया जा सके कि अहमद रजा बाबाई एक धोखेबाज और चालबाज शख्स है। लेकिन एक मामूली इत्तेफाक से यह पासबुक कावे के हाथ लग जाती है, या यह कहना बेहतर होगा कि कावे शाइस्ता के हाथ लग गई और हालात बदल गए। यह था पूरा माजरा। खत्म हो गया। मुझे प्यास नहीं है, चलें।
हमें टैक्सी से जाना होगा।
क्यों?
वल्ला मेरा ख्याल है आपने थोड़ी देर कर दी। ये हमारी गाड़ी का ऐसी कुछ ज्यादा ठंडा नहीं कर रहा था, उसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन स्टार्ट सिस्टम खराब हो गया।
मुजदबा, तुमने क्या बताया था कि तुम्हारी शादी की तजवीज को लड़कियों ने बार बार ठुकरा दिया? मैं टैक्सी से जा रहा हूं और तुम भी जब गाड़ी ठीक हो जाए तो लेकर आ जाना।
अब बिल्कुल धुल गया है, पाक और पाकीज़ा।
इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी जगह से उठेगा।
अपनी जगह से उठ गया है, देखो खुशहाल और शादमान। बस हल्का फुल्का होना चाहिए कि है। क्या तुम भी हल्के फुल्के हो गए?
तुमको खुदा का वास्ता खुजिस्ता खानम, अब तुम कुछ और मत बोलो, मुझे शर्मिंदा ना करो। दुनिया में बहुत उलटफेर हो गया मगर मैं बुरा आदमी बन गया। सबने मेरी मां को भुला दिया, मेरी मेहरी मां को भुला दिया, मेरी वालिदा को भुला दिया, उनकी मजलूमियत को, मेरी यतीमी को भुला दिया।
क्या इन सब का रोया से ताल्लुक था?
तुम और अहमद रजा जीत गए, हारने वाले की तुमको खबर नहीं।
तो क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी हार हुई है?
इंसान अपनी इंसानियत की वजह से जिंदा है, जब इंसानियत ही बाकी नहीं रही तो ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? क्या होना क्या ना होना, अच्छाई और बुराई का फासला एक बाल के बराबर है और दुनिया की वफा भी एक बाल जितनी महीन है। दुनिया को कभी बहुत संजीदगी से मत देखो और ना ही उसको लापरवाही की निगाह से देखो। ये जो मैं कह रही हूँ कि दुनिया को संजीदगी से देखो, इसलिए कि उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं जो संजीदा हैं। ये जो मैं कहती हूँ कि दुनिया को ज्यादा संजीदा ना लो, इसलिए कि उसके कीने का गुलाम मत बनो। कीना को बर्फ का टुकड़ा समझो मेरी बच्ची, अपनी गर्म निगाहें उस पर जमा दो ताकि वो बर्फ की तरह पिघल जाए। इस दूर गुजर दुनिया में एक हमदम की जरूरत होती है, जैसा कि मुझको किसी की जरूरत है। एक हमदम की जरूरत है मुझको, ताकि मैंने जो अपने कंधों पर बोझ उठा रखा है कि खुद को इमाम रजा के पड़ोस में पहुंचाऊं, उन सुनहरे गुंबदों के पास, पेट भरकर दाना खाए कबूतरों के पास। कावे को तुम्हारी जरूरत है, तुमको कावे की जरूरत है। मैंने उसकी भरपूर सरजनिश की, उसको अपने पास से भगा दिया ताकि वो तुम्हारे पास लौट आए। वो इश्क से सरशार होकर तुम्हारे पास लौटेगा और जब आए और शर्मिंदा हो तो उसको माफ कर देना। कावे सोगवार है, अपनी माँ का दायमी सोगवार।
نفسِ باد صبا مشک فشان قاحت شد، عالمِ پیر دیگر بار جوان قاحت شد. ارغوان جام حقیقی بے ثمن قاحت داد، چشم نرگس بے شغایق نگران قاحت شد.
इमाद को माफी मिल गई है, मैंने बात पीर को छोड़ दिया जाएगा।
खुदा का शुक्र है। सलाम सलाम
सलाम।
आइए अंदर तशरीफ लाइए।
आइए।
अकरम खानम, आंखों में कितना गड्ढा पड़ गया है।
मेरी माँ की आंखें नहीं देखी हैं। मोहसिन ने फिर से बाबा की दुकान चलानी शुरू कर दी है। दुकान में रोशनी है, मैं चाहती हूँ इस घर में भी रोशनी आए। मैं जानती हूँ आपने अपना मुंह मीठा कर लिया है, मुझे आपकी शर्म हया की खबर है। मुझे पता है कि तुम पूना की मौत की वजह से अपनी शादी का जश्न नहीं मनाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम पूना की बरसी तक सब्र करो। मैं चाहती हूँ कि शादी का प्रोग्राम बना लो। मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारी शादी का पहला तोहफा ये होगा उनकी तरफ से। सलाम मोहतरमा खुजिस्ता, ठीक है?
खुजिस्ता खानम, सलाम
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 सलाम खुजिस्ता जान।
सलाम
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 आई
क्या हुआ? खुजस्ता नार्स
लगता है अब वक्त आ गया है।
मदद करो बराए मेहरबानी।
धीरे धीरे आराम से बैठो अजीजम।
इब्तिदा भी तू इंतहा भी तू।
शेओरों